नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 2024 के चुनाव की यह सबसे बड़ी खबर है। अफसोस कि सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले को आने में कई साल लगे। कई साल तो सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई पूरी हुई तो उसके बाद भी इसके आने में 3 महीने लग गए। लेकिन अब जब यह फैसला आया है तो ठोक बजाकर आया है। उम्मीद है आप आज के वीडियो को सांस रोककर पूरा देखेंगे। देखिए कि कैसे आपके भारत के लोकतंत्र का गला घोटने के लिए एक असंवैधानिक तरीका अपनाया गया और मोदी सरकार उसे पारदर्शी व्यवस्था बताती रही। आज उस पारदर्शी व्यवस्था के पीछे का गहरा अंधेरा सामने आ गया है। आप सभी के साथ लगातार धोखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया है। इस फ्रॉड व्यवस्था को लाने के लिए भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून, आयकर कानून और कंपनी एक्ट में संशोधन किए गए थे, उन सभी संशोधनों को रद्द कर दिया गया है। यही नहीं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड पिछले 15 दिनों में आए हैं और भुनाए नहीं गए हैं, उन्हें लौटाना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की एक संवैधानिक पीठ ने पिछले साल नवंबर में सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित कर लिया था। सुनवाई 3 दिनों तक चली, आज फैसला आ गया। हम आज के वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सवाल, इस सवाल को कोर्ट तक ले जाने वाले हीरो की भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे कई लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी है, वे हताशा से गुजरे हैं, निराशा में डूबे हैं और आज उम्मीद से लबालब हैं। 10 साल में लोकतंत्र बचाने के कई मोर्चों पर उन्हें हार मिली है। इस जीत ने उन तमाम हारों का हिसाब आज बराबर कर दिया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी लेंगे? उन्हीं के नेतृत्व में यह कानून पास हुआ जिसे आज कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। गोदी मीडिया के कितने पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की हिम्मत कर पाएंगे? इलेक्टोरल फंड को लेकर सारे सवाल आज सही साबित हो गए। क्या पता एक दिन पीएम केयर फंड को लेकर भी यही हो जाए। जो सरकार चुनावी चंदे के मामले में इतना दुस्साहसी असंवैधानिक कदम उठा सकती है, उसे आज जवाब देना चाहिए था कि उसने ऐसा क्यों किया। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की नाक के नीचे, आंखों के सामने उनकी पार्टी ने चंडीगढ़ में जो किया आपने देखा। लोकतंत्र की हत्या की, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया, तब भी कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने सामने नहीं आया। 10 दिनों के भीतर मोदी सरकार और उनकी पार्टी का इतना बड़ा फ्रॉड सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा है। प्रधानमंत्री के पास आज मौका है, इसी सवाल पर वे पहली बार, 10 साल में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। ईडी और इलेक्टोरल बॉन्ड, इन दो के दम पर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने चुनावी मशीनरी का साम्राज्य खड़ा कर दिया था। ईडी के सहारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया, पार्टी में तोड़फोड़ की गई, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के सहारे विपक्ष की आर्थिक क्षमता को कमजोर कर दिया गया। देखते देखते भारत की राजनीति से विपक्ष तेजी से गायब होने लगा। उसकी मौजूदगी लाचार, बेबस, हताश राजनीतिक इकाई के रूप में रह गई। नरेंद्र मोदी की सरकार 2017-18 में इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। यह मामूली फैसला नहीं है, एक असंवैधानिक व्यवस्था के सहारे इलेक्टोरल बॉन्ड का जन्म हुआ। धर्म की राजनीति का तूफान पैदा कर दिया जाता है जब भी इस तरह के सवाल आते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सवालों को भी जनता तक पहुंचने नहीं दिया गया। गोदी मीडिया, जो अपने पेशे के धर्म की रक्षा नहीं कर सका, जो संवैधानिक धर्म की रक्षा नहीं कर सका, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं मंदिर के सामने खड़ा हो जाता है, उसका फोटो लेकर धर्म रक्षक बन जाता है। और जनता ने भी इन सवालों की परवाह नहीं की। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक कहते हुए रद्द कर दिया है। भारत के लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कभी नहीं हुआ, आज वो फ्रॉड धर लिया गया। राहुल गांधी ने लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल उठाए, आज वे भी सही साबित हो गए। एक नेता जो चुनावों में लगातार हारता है, मगर उसके उठाए सवाल लगातार सही साबित होते जा रहे हैं। 18 नवंबर 2019 का राहुल गांधी का यह ट्वीट है। राहुल ने अंग्रेजी में लिखा है, न्यू इंडिया ब्राइब्स एंड इलीगल कमीशन आर कॉल्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स, मतलब यही नया भारत है जहां रिश्वत और अवैध कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता है। राहुल ने तब हफपोस्ट की एक रिपोर्ट ट्वीट की थी जिसमें तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली, रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल देखे जा सकते हैं। आज यह तस्वीर इतिहास का शिलालेख बन गई है। हफपोस्ट अब बंद हो चुका है। आज भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि नरेंद्र मोदी की एक और भ्रष्ट नीतियों का सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई। कांग्रेस पार्टी ने 2019 के घोषणा पत्र में लिखा है कि सरकार बन गई तो इलेक्टोरल बॉन्ड को समाप्त कर देंगे। कांग्रेस चुनाव हार गई, मगर आज वही काम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हो गया। गोदी मीडिया इस सवाल को लेकर तब भी चुप रहा, अब भी चुप रहेगा, मगर कुछ पत्रकार थे इक्का दुक्का ही जो अपना पेट काटकर, लोगों से चंदा जमा कर इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी घटनाओं पर, उसके फ्रॉड पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। आज उनके इरादों की भी जीत हुई है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने वाले नरेंद्र मोदी सरकार का एक फैसला असंवैधानिक घोषित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह केवल फायदे का लेन देन है, त्विद प्रो क्यों है। इसका मतलब यही हुआ कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाओ, हजारों करोड़ों का चंदा लो, उन्हें लाखों करोड़ का मुनाफे का अवसर दो। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और जनप्रतिनिधित्व कानून व कंपनी कानून में किए गए संशोधन अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करते हैं, सूचना के अधिकार के विरुद्ध हैं और असंवैधानिक है। कंपनी एक्ट में किए गए संशोधन से कॉरपोरेट द्वारा असीमित चंदा दिया जाना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड जारी करने वाले स्टेट बैंक से कहा है कि सबसे पहले बॉन्ड की बिक्री तुरंत बंद की जाए। 3 हफ्ते के भीतर जिन व्यक्तियों और कंपनियों ने बॉन्ड खरीदे हैं उनकी जानकारी तैयार की जाए। हर बॉन्ड जो जारी किया गया है उसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। बॉन्ड को किसने खरीदा, किस पार्टी को मिला, कितने का था और किस दिन भुनाया गया, इसकी जानकारी भी देनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन बॉन्ड को भुनाया नहीं गया है और जिनके समाप्त होने में अभी 15 दिन शेष हैं, राजनीतिक दलों को वह बॉन्ड लौटा देना पड़ेगा।
बिल्कुल, हम जान पाएंगे। मैं जो ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, मैं समझता हूँ कि अपने आप में ऐतिहासिक है। पिछले 20-25 साल में ऐसा कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। ये फैसला ये दर्शाता है कि जो हमारा लोकतंत्र है उसमें दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली बात, एक पारदर्शिता होनी चाहिए। जो नागरिक है उसको पता होना चाहिए कि कौन कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा किस पार्टी को गया, कितना पैसा दिया और किसने उस वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। ये पारदर्शिता लाई गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा। दूसरी बात ये है कि इसके द्वारा ये भी साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो बाधाएं खत्म की गई थी संशोधन की वजह से, इनकम टैक्स एक्ट की संशोधन की वजह से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट पीपल्स एक्ट की संशोधन की वजह से, कंपनीज एक्ट की संशोधन की वजह से, ये जो संशोधन किया गया है ये गलत है और ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट में जो संशोधन किया गया वो इसलिए किया गया क्योंकि कानून इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के पहले कोई भी कंपनी जो मुनाफे में चलती है उसका 10% एवरेज मुनाफा वो कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती थी। अब वो लिमिट खत्म हो गई, वो बाधा खत्म हो गई इस कानून द्वारा, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम द्वारा कितना भी पैसा दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये गलत है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलती है वो भी गलत है। और तीसरा, जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट में पॉलिटिकल पार्टीज को बताना पड़ता है कि 20,000 से कितना पैसा आया इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा, वो भी संशोधन की वजह से नहीं बताना पड़ेगा। तो तीनों चीजें सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। तो इसका मतलब यह है कि अब ये जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दी जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये जानकारी 3 हफ्ते में इस कोर्ट के फैसले के 3 हफ्ते में जानकारी इलेक्शन कमीशन को इंडिया दे कमीशन ऑफ इंडिया को देगी और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जानकारी 1 हफ्ते में अपनी वेबसाइट पे उसको शामिल करेगी ताकि देश के नागरिक को ये पता चल जाए कि कितना पैसा कितने कौन से उद्योगपति ने या कौन से नागरिक ने दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा किसी भी राजनीतिक दल को। और ये तो साफ जाहिर है कि सबसे ज्यादा पैसा भाजपा को मिला है, क्योंकि लगभग 5 से 6 हजार करोड़ रुपया इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम द्वारा इकट्ठा किया है और उसके द्वारा इन्होंने प्रयास किया है और ये सफल भी रहे हैं कि बाकी राजनीतिक दल इनका मुकाबला कर ही ना पाए।
जो राज था उसका पर्दाफाश होने जा रहा है जब सारे डिटेल्स सामने आएंगे और साफ साफ हो जाएगा कि बीजेपी को कौन कौन सी कंपनी चंदा दे रही थी, कौन कौन से उद्योगपति चंदा दे रहे थे और सरकार उस कंपनी और उद्योगपति के फायदे के लिए क्या क्या कर रही थी, गोदी मीडिया उसके पीछे पीछे क्या कर रहा था। 2014 के बाद से बीजेपी का कोई भी चुनावी अभियान देखिए, रैलियों की सजावट से लेकर अखबारों और चैनलों में विज्ञापन तक देखिए, राजनीति में पैसे के घोषित अघोषित ज्ञात अज्ञात खर्चे के सारे सवाल ही गायब हो गए। सबको दिख रहा था मगर कोई पूछ नहीं रहा था। धर्म के नाम पर लोग तमाम तरह के अधर्मों को बर्दाश्त कर रहे थे। लगातार खबरें छप रही थीं, इलेक्टोरल बॉन्ड से आने वाला चंदा सबसे अधिक बीजेपी के पास जा रहा है। 6,500 करोड़ का चंदा बीजेपी को मिला है। बॉन्ड के अलावा चंदे के रूप में भी कॉरपोरेट का सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिलता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का आंकड़ा है कि 2022-23 में जितने भी कॉरपोरेट बॉन्ड बिके हैं उसका 90% बीजेपी को गया है। 2022-23 के बीच कॉरपोरेट ने 850 करोड़ का चंदा दिया, इसमें से 719 करोड़ का चंदा केवल बीजेपी को गया, कांग्रेस को मात्र 79 करोड़। तो इस तरह कई हजार करोड़ रुपए के चंदे से बीजेपी पैसे के मामले में सबसे ताकतवर पार्टी हो गई और आर्थिक क्षमता के हिसाब से भारत के राजनीतिक दलों के बीच भारी असंतुलन पैदा हो गया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भ्रष्टाचार का मामला है जिसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। आज प्रधानमंत्री बेनकाब हो गए हैं।
आज प्रधानमंत्री एक्सपोज हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं, उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया। ये भ्रष्टाचार मैं कहूं बचते हुए कह दूं कि भाजपा का भ्रष्टाचार है, ये इलेक्टोरल करप्शन है, ये सब मुझे लगता है लाग लपेट की बात होगी। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक भ्रष्टाचार है जिसको कानूनी जामा पहनाने का प्रयास किया गया। मनी बिल लाकर आपने मनी का इंतजाम कर दिया विधायक खरीदने के लिए, कोयले की खदान देने के लिए, हवाई अड्डे देने के लिए, अपने मित्रों को उपकृत करने के लिए, यह आपके सामने है। आज मैं फिर से हमारी पार्टी की ओर से, इस देश की जनता की ओर से, उन तमाम वकीलों को, एक्टिविस्ट को, एनजीओस को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को खुले दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने एक ऐसा आदेश आज पारित किया है जिससे लोकतंत्र के जिंदा रहने की उम्मीद हम सबके मन में जागी।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हमेशा ही इलेक्टोरल बॉन्ड का बचाव किया है मगर उसकी दलीलें आज काम नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। यह ऐसा फैसला है जिसकी गूंज बाहर कम सुनाई देगी क्योंकि गोदी मीडिया इस पर घनघोर कवरेज नहीं करेगा। इसकी जगह आपको मंदिर का फोटो दिखाएगा ताकि आप भूल जाएं कि भारत के लोकतंत्र के साथ इस बॉन्ड के जरिए कितना बड़ा फ्रॉड किया जा रहा था। 2017 में जब यह बॉन्ड आया तभी से इसे लेकर सवाल उठ रहे थे। पुरानी खबरें निकालकर देखिए, लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए शुरू में जो कॉन्सेप्ट नोट बना वो किसी अधिकारी के लेटर पैड पर नहीं बल्कि सादे कागज पर बना। यह खेल हो रहा था, ना तो सादे कागज पर तारीख थी ना ही किसी का दस्तखत। पूर्व अधिकारियों ने इस कागज को देखकर बताया है कि बाहर से किसी ने लिखा है और इसकी भाषा अधिकारियों की नहीं लगती है। 18 नवंबर 2019 की नितिन सेठी की यह रिपोर्ट देखिए। नितिन सेठी ने तमाम दस्तावेजों के साथ इस फ्रॉड को तभी उजागर कर दिया, बता दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार इस पर आपत्ति जताई कि इस तरह से बॉन्ड नहीं लिया जा सकता है। तमाम बैंकों ने कहा कि इससे धोखाधड़ी बढ़ जाएगी, मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ेगी, मनी लॉन्ड्रिंग। 2017 का बजट पेश होने वाला था, इसी में इलेक्टोरल बॉन्ड की घोषणा होने वाली थी। इसके जरिए कॉरपोरेट से मोटा चंदा समेटने के लिए कानूनी जुगाड़ निकाला जा रहा था। बजट पेश होने जा रहा है और किसी को पता नहीं कि ऐसा कानून आ रहा है। बजट पेश होने से 4 दिन पहले रिजर्व बैंक से राय मांगी जाती है, इतना बड़ा फैसला और आखिरी मिनट में रिजर्व बैंक से राय मांगी जाती है। तब के राजस्व सचिव हंसमुख अधिया के जवाब के अनुसार तब तक वित्त विधेयक की कॉपी छप गई थी। फिर भी रिजर्व बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कई आपत्तियां दर्ज कराता है जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। रिजर्व बैंक की आपत्ति गोपनीयता को लेकर थी, तो जवाब मिला कि दान देने की गोपनीयता ही इसका उद्देश्य है। बजट पेश करने से 4 दिन पहले एक सीनियर टैक्स अफसर को कुछ गड़बड़ियां नजर आती हैं। उसे इरादा समझ आ जाता है कि इसके जरिए बड़े कॉरपोरेशन, बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी पहचान छिपा लेंगी और बेपनाह दौलत राजनीतिक दलों के आगे बिछा देंगी। यह तभी मुमकिन होगा जब भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम में बदलाव किया जाए। उसी दिन वित्त मंत्रालय की तरफ से रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर को ईमेल भेजा जाता है और उनसे तुरंत टिप्पणी मांगी जाती है। 30 जनवरी 2017 को रिजर्व बैंक कहता है कि उसके अधिनियम में संशोधन करने से गलत परंपरा शुरू होगी, मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ जाएगी, पैसा किसी तीसरी पार्टी का होगा और खरीदने वाला कोई और होगा, इससे पारदर्शिता का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। है ना ये कमाल, रिजर्व बैंक और वित्त विभाग के अफसर को यह शक है कि मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ जाएगी। तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था? मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में विपक्ष के न जाने कितने नेता जेलों में बंद कर दिए गए। भ्रष्टाचार के हर दूसरे मामले को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बना दिया जाता है ताकि जेल में ही सड़ते रहे और बेल ना मिले। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का खेल हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक प्रक्रिया पर व्यक्ति से ज्यादा असर कंपनियों का होता है। कंपनियां मनमाने तरीके से चंदा दे सके, इसके लिए मनमाने तरीके से कंपनी एक्ट के सेक्शन 182 में संशोधन कर दिया गया और इसी के साथ कंपनी और व्यक्ति दोनों को बराबर कर दिया गया, जबकि चंदा देने वाले एक व्यक्ति की तुलना में कंपनी अपने चंदे के बदले राजनीतिक दल और उसकी सरकार से कहीं ज्यादा बड़े फायदे हासिल कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि इन संशोधनों से मुनाफे और घाटे में चल रही कंपनियों के बीच के फर्क को मिटाना मुश्किल होता है, इसलिए इन संशोधनों को रद्द कर दिया गया। यह बात हमने तब भी बताई थी जब अदाणी पूर्व एनडीटीवी में प्राइम टाइम किया करता था कि इस संशोधन के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का खेल हो सकता है। हमने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कई प्राइम टाइम किए, बाद में अपने यूट्यूब चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल पर भी इस मुद्दे को लेकर विस्तार से कवरेज किया। तब से बता रहा हूं कि इस बॉन्ड के बाद लोग कागजी कंपनियां बनाकर चंदा देने लग जाएंगे और आज ये आशंका सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गई।
ये तो नहीं कह सकते कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, क्योंकि ये तो बात की तो तफ्तीश की बात है, इन्वेस्टिगेशन की बात है। तो जब हमें क्विड प्रो को पता चल जाएगा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई तो FIR दर्ज होगी, ED का मुकदमा दर्ज होगा, हम प्रयास करेंगे, लेकिन जो इनका इतिहास रहा है इसको दर्ज नहीं होने देंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि कोई अब कानून नहीं आ सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया कि ये असंवैधानिक है तो जो पुराना कानून लागू था वही लागू रहेगा, उसमें अगर संशोधन लाना चाहें तो ला सकते हैं, लेकिन ये स्कीम रद्द की गई है और इसके द्वारा जो भी पैसा कमाया है भाजपा ने, और लगभग 5 से 6 हजार करोड़ रुपया कमाया है उसका, फिर उसके द्वारा इन्होंने अपनी संपत्ति के अपने दफ्तर बनाए, शायद RSS के दफ्तर बनाए, खर्चा किया, एयरप्लेन्स में जो MLA ले जाए गए बाकी प्रदेशों में ताकि सरकारें गिराई जाए, ये सब ये काम इन्होंने किए इसी पैसा के द्वारा। तो और इससे कोई काले धन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि काला धन तो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये तो सारा वाइट का पैसा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट, ये सरकार को कहना कि काले धन की वजह से, काले धन के दुरुपयोग से हम ये कानून ला रहे हैं, ये तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कितना काला धन यहाँ खर्च होता है, रोज खर्च होता है और इसके अलावा खर्च होता है। तो ये तो एक इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम, इलेक्शन का इसका कोई ताल्लुक नहीं था, ये बॉन्डिंग बिटवीन कॉरपोरेट सेक्टर और भाजपा, ये इसका मकसद।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी राजनीतिक दल चंदे का रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन 2018 से लेकर 2024 के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो खेल हुआ है उसका पाई पाई का हिसाब जनता के बीच पहुंचना चाहिए। कपिल सिब्बल कहते हैं कि मोदी सरकार का यह सबसे बड़ा घोटाला है, कोर्ट के फैसले के बाद सब सामने आ जाएगा। जनता को अंधेरे में रखने के लिए पारदर्शी का मतलब ही बदल दिया गया। सबको पता था कि स्टेट बैंक सरकार के नियंत्रण में चलता है, तो सरकार को पता रहेगा कि किस कंपनी ने विपक्ष को चंदा दिया, किसने BJP को, जो विपक्ष को चंदा देगा उसके साथ क्या हुआ, यह कहानी भी कभी सामने आएगी जब दौर बदलेगा। यही कारण है कि विपक्षी दल आर्थिक रूप से जर्जर होते चले गए, आज वो खेल पकड़ में आ गया। 1 महीने के भीतर यानी मार्च खत्म होते होते यह जानकारी चुनाव आयोग के वेबसाइट पर आ जानी चाहिए।
मैं सब राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि इसको एक राष्ट्रीय अभियान, राष्ट्रीय मूवमेंट के द्वारा इलेक्शन में बताया जाए देश की जनता को किस तरीके से बीजेपी ने, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा स्कैम है। मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं कि कहाँ है स्कैम, वो बीजेपी के खिलाफ तो ये साबित हो गया कहाँ है स्कैम, ये तो आपके द्वारा ही है स्कैम किया हुआ। और ये एक राष्ट्रीय मूवमेंट बनना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों में इसमें शामिल होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला विपक्ष के लिए बड़ी जीत है। सरकार के खिलाफ कई मामलों में कोर्ट से उसे निराशा मिल रही थी। पूर्व जजों ने भी सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को लेकर निराशा जाहिर की और तर्कसंगत नहीं बताया। एक दिन पहले उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली। 14 फरवरी का दिन भारत के न्यायिक इतिहास में सबसे उदास करने वाला दिन रहा कि एक युवक ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। 14 बार उसके मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। इन सभी को याद करते हुए, सामने रखते हुए आज के फैसले को देखिए। शायद इसीलिए आज का फैसला एक ऐसा फैसला है जिसने चंद उद्योगपतियों के हाथ में चुनावी व्यवस्था के गुलाम बन जाने की एक बड़ी कोशिश रोक दी। और वो कोशिश कौन कर रहा था आप जानते हैं और मैं बता चुका हूं। कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, शादान फरासत, निजाम पाशा, विजय हंसारिया ने बहस की है। आज सिब्बल अपने घर में ही मीडिया से घिरे रहे, तबीयत ठीक नहीं होने के कारण फैसले को ऑनलाइन ही सुना। मगर ऐसे कितने सवालों को लेकर सिब्बल और प्रशांत भूषण और निजाम पाशा जैसे वकील हालात से लोहा लेते रहे हैं। क्या बाकी वकीलों को यह सब सवाल नजर नहीं आ रहे हैं? क्या उन्हें आज के दिन नहीं लग रहा होगा कि उन्हें भी ऐसे वक्त में अपनी संवैधानिक भूमिका निभानी चाहिए? इन सभी वकीलों ने अपने वकील होने का आज फर्ज निभा दिया। इन वकीलों की बदौलत ही इतना बड़ा चुनावी घोटाला भारत के सामने आ सका है। इस मामले में याचिका दायर करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR है, कॉमन कॉज है, CPM पार्टी है और कांग्रेस की नेता जया ठाकुर है। CPM के नेता सीताराम येचुरी ने बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। ADR की रिपोर्ट लगातार छप रही थी। जगदीप छोकर लगातार लिख रहे थे, बोल रहे थे कि चंदा केवल बीजेपी को जा रहा है, यह बॉन्ड एक किस्म का घोटाला है। इन सभी की बात आज सही साबित हो गई।
इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो 2017 में कोशिश की गई थी कि हमारे चुनाव व्यवस्था में एक ऐसा प्रावधान कर दिया जाए कि जिसमें जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जो सत्तारूढ़ दल हैं उनको जितना पैसा मर्जी कोई भी दे दे और उसका पता किसी को भी ना लगे, तो वो एक गड़बड़ को हटा दिया गया है। ये जो हमारे चुनाव सुधार पहले था वो भी कोई बहुत बढ़िया नहीं था, उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन ये जो एक नई दिक्कत 2017 में लगाई गई थी वो आज हट गई है और इससे ये देशवासियों को मेरे ख्याल में यकीन होगा कि संविधान में अभी भी विश्वास रखना पॉसिबल है और देश की जो सबसे बड़ी अदालत है वो कानून को एक ही तरीके से सबको अप्लाई करती है और इसमें जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रही थी, अनइवन लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई थी, उसको लेवल कर दिया गया है। और दूसरे जो वोटरों का या नागरिकों का सूचना के अधिकार का हक था कि उनको सूचना मिले राजनीतिक दलों के चंदे के बारे में, वो भी बंद हो गया था, उसको भी इन्होंने हटा दिया है। तो मैं समझता हूँ राजनीतिक दलों को और ख़ास तौर पर सत्तारूढ़ दल जो हैं उनको इससे बहुत सबक मिलना चाहिए और उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के हथकंडे अपनाने से वो देश के चुनाव व्यवस्था को अपने कब्जे में नहीं कर सकते हैं।
पहले ही हमारे देश में लोगों को सही से जानकारी नहीं होती थी कि कहां से पैसे आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा चंदा पॉलिटिकल पार्टीज के पास कैश में आता था, वो बताती ही नहीं थी कि किसने उनको कैश दिया है। लेकिन जो बैंकिंग चैनल्स से पैसा आता था उसके बारे में लोग जानकारी रख पाते थे। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने वो जो पैसा बैंकिंग चैनल से आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए वो भी गोपनीय बना दिया। तो ये तो पूरी तरह से लेजिटिमाइज हो गई कि असीमित पैसे आते रहे पॉलिटिकल पार्टीज के पास, और वो चाहे बैंकिंग चैनल से आए चाहे कैश से आए, लोगों को बिल्कुल मालूम ही ना पड़े कि कौन पैसे दे रहा है पॉलिटिकल पार्टी को, और ये पूरे पर्दे के पीछे काम चलता रहे, जिस जो कि हम जानते हैं भ्रष्टाचार की जड़ रही है। किकबैक्स जो होते हैं, पूरे तमाम जो करप्शन होती है, पॉलिटिकल करप्शन है, हाईएस्ट लेवल्स पे करप्शन है, वो इसी तरीके से हमारे देश में होती आई, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से उसको पूरी तरह से लेजिटिमाइज भी कर दिया गया, जो पैसे बैंकिंग चैनल से आ रहे थे उसके लिए भी। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसमें कोर्ट ने यही कहा है कि किसी भी लोकतंत्र में ये नहीं हो सकता कि जो लोग वोटर हैं, जो सिटीजन हैं, वो ये ना जान पाएं कि किसने पैसे दिए पॉलिटिकल पार्टी को। अब से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से फंड्स नहीं ले पाएंगी।
एडीआर के जगदीप छोकर के साथ साथ रिटायर्ड कॉमोडोर लोकेश बत्रा ने अनगिनत आरटीआई किए, वे भी इस जीत के नायक हैं। उनकी जानकारी ने इस फ्रॉड को हर तरफ से घेर लिया। कभी वे नासिक के सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से पूछा करते थे कि कितना बॉन्ड प्रिंट हुआ है, तो कभी राजस्व विभाग से। सरकार के ही कई विभागों में आरटीआई दायर कर लोकेश बत्रा ने उस दौर में वो कर दिखाया जब कई लोग हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। लोकेश बत्रा ने यह भी उजागर कर दिया कि पारदर्शी होने के नाम पर यह बॉन्ड लाया गया है, मगर सरकार डिजिटल पेमेंट से बचना चाहती थी। आखिर दुनिया भर को डिजिटल पेमेंट का लेक्चर देने वाली सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में केवल डिजिटल पेमेंट से क्यों बच रही थी? सरकार जानती थी कि लोकेश बत्रा जैसे लोकतंत्र के सच्चे सिपाही आरटीआई करेंगे, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को आरटीआई से अलग किया गया। यानी कोई नहीं जान सकता था कि किस कंपनी ने चंदा दिया, किसने बॉन्ड खरीदा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा करना आरटीआई का भी उल्लंघन है।
क्या हो रहा है, स्टेट बैंक जिस दिन खत्म करता है ना काम, अगले दिन एक पत्र लिखा जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, पूरा ब्यौरा दिया जाता है, उसके नीचे लिखा जाता है कितने सर्विस चार्ज है, उसको वो ये लोग कमीशन बोलते हैं। और जो कमीशन है वो डिजिटल पे अलग लगती है और जो फिजिकल पे अलग लगती है। फिजिकल में ये लोग मानते हैं चेक और ड्राफ्ट। स्टेट बैंक जो है वो केवाईसी करता है, उसको पता है किसने खरीदा, और हर इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो प्रोमिसरी नोट है उसके ऊपर एक सीक्रेट डिजिटल एक नंबर होता है जो कि यूवी लाइट में दिखता है। तो जो एनकैश करेगा बैंक ब्रांच, उसको पता है ये बेकार, ये जेन्युइन है कि फॉल्ट है। तो बैंक के पास ये पता होता है किसने किया, किस पॉलिटिकल पार्टी ने किया। और दूसरा ये है कि बैंक से कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी लाइक ईडी सीबीआई कुछ पूछ सकते हैं, हमें ये नहीं पता। उसके पूछने का मतलब गवर्नमेंट को भी पता होता है। आरबीआई कहता था पहले तो मान नहीं रहे थे, जब उसके पास बहुत दबाव डाल दिया और उनका जो आरबीआई एक्ट 81 को अमेंड कर दिया गया, तो उन्होंने कहा कम से कम, क्योंकि ये करेंसी बनाना हमारा चार्टर है, हम बनाएंगे, हम छापेंगे बेचेंगे, वो गवर्नमेंट ने नहीं माना। उन्होंने कहा हम किसी और बैंक को ऑथराइज करेंगे, तो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज कर दिया, आरबीआई से वो भी छीन लिया। उसके बाद भी आरबीआई के जो गवर्नर थे उर्जित पटेल जी, उन्होंने बार बार पूर्व हमारे लेट अरुण जेटली जी को पत्र भी 2-3 लिख के, और ये सितंबर के 2017 तक लिखते चले गए। वो ये कह रहे थे कि अगर आपने करना है तो इसमें तो शेल कंपनी बन जाएंगी, जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा था, कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कम से कम इसको डिजिटल डीमैट जिस फॉर्म में होता है उस फॉर्म में जो बिकते हैं उस तरीके से बेचे जाए। सरकार ने उनके जवाब में लिखा, जो तो अपने सेक्रेटरी थे, कि वो तो हमारा सारा पर्पज ही खत्म हो जाएगा, हम चाहते हैं कि जो डोनर है उनका नाम सीक्रेट। तो मतलब पूरी फाइलों में एक ही चीज था, किसी तरीके से जो डोनर्स हैं जो पैसा डोनेट करते हैं उनका नाम बाहर गया। इसके चक्कर में उन्होंने, इसकी वजह से उन्होंने सभी लॉ बदले गए।
तो कितना कुछ हो रहा था, मगर सरकार को पता था कि दबदबे की राजनीति के लिए धन चाहिए और धन मिलता रहे, कॉरपोरेट खुलकर उसकी पार्टी को धन दे सके, इसलिए कानून चाहिए। ऐसा नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से दूसरे दलों को चंदा नहीं मिला, मगर सबसे अधिक और कई गुना अधिक चंदा बीजेपी को ही मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए फाइनेंस बिल का सहारा लिया गया, 2018 में इसे नोटिफाई कर दिया गया। चुनावी चंदे की व्यवस्था को साफ सुथरा करने के नाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया, मगर इसे लाने का तरीका भी फ्रॉड था और जिस इरादे से लाया गया वो भी फ्रॉड निकला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो जाता है, कॉरपोरेट चंदा देगा तो उसका नाम और चेहरा गुप्त रहेगा। आप पैसे का लेन देन करें तो आपका आधार और पैन कार्ड एक दूसरे से खाते से जोड़ दिया जाता है, आपकी सारी जानकारी सरकार के पास पहुंच जाती है और राजनीतिक दल मूल रूप से बीजेपी को छक्कर चंदा देने वाली कंपनियों की जानकारी आपसे गुप्त रहेगी। यह खेल आपको अब भी समझ जाना चाहिए। याद रहना चाहिए कि शुरू में रिजर्व बैंक और चुनाव आयोग दोनों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। संसद में इसके पास हो जाने के बाद तक चुनाव आयोग ने लिखित रूप में कानून व न्याय मंत्रालय से कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के रास्ते राजनीतिक दलों को विदेशी स्रोत से मिलने वाले अवैध चंदे को छिपाने में सहायता मिलेगी। रिटायर्ड कोमोडोर लोकेश बत्रा ने आरटीआई के जरिए इन आपत्तियों के कागजात निकाले थे, जिसके बाद नितिन सेठी ने अपनी रिपोर्ट फाइल की। सवाल उठ रहे थे कि चंदा देने वाला शेल कंपनी बनाएगा, काला धन राजनीतिक दलों के यहां खपा देगा। तब तो चुनाव आयोग भी चाहता था कि इलेक्टोरल बॉन्ड वापस ले लिया जाए। कानून मंत्रालय ने इन आपत्तियों को वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया, मगर वित्त मंत्रालय ने अनदेखा कर दिया। फिर भी अक्टूबर 2018 के अंत तक चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड को वापस लेने की बात करता रहा। इसके लिए कई बार रिमाइंडर भी भेजा गया, लेकिन वित्त मंत्रालय ने अनदेखा कर दिया। तो ऐसा क्या हासिल किया जाना था? रिजर्व बैंक ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पारदर्शी नहीं है। चुनाव आयोग को सर्वोपरि मानने का लेक्चर देने वालों ने चुनाव आयोग की बात नहीं सुनी। चुनाव आयोग ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध किया, इसके बाद भी इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून बनाया गया। हर स्तर पर झूठ बोला जा रहा था, कुछ छिपाया जा रहा था तो कुछ आधा अधूरा कहा जा रहा था। दिसंबर 2018 में राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद मोहम्मद नदीमुल हक ने सवाल किया, क्या चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी? तब वित्त राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन ने जवाब दिया, आपत्ति दर्ज नहीं कराई, जबकि रिजर्व बैंक और चुनाव आयोग दोनों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। बाद में निर्मला सीतारमण को मानना पड़ा कि चुनाव आयोग ने आपत्ति दर्ज कराई थी। उस समय तक रिटायर्ड कॉमोडोर लोकेश बत्रा आरटीआई के जरिए इन आपत्तियों के कागजात निकाल चुके थे। तब सांसद नदीमुल हक ने विशेषाधिकार के हनन का मामला दर्ज कर दिया, लेकिन इसके बाद भी वित्त राज्य मंत्री अपने पहले जवाब पर अड़े रहे। अप्रैल 2019 में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ नहीं है, लेकिन इनके गुमनाम होने के खिलाफ है। सोचिए, अभी तक 16,500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड बिका है, इनमें से 95% चंदा 1 करोड़ वाले बॉन्ड से आया है। इसका मतलब है कि अमीर लोगों का दबदबा बढ़ा है। इतना ज्यादा पैसा कोई धन्ना सेठ दे सकता है या फिर कोई कंपनी। अब सबके नाम सामने आएंगे तो पर्दा हटेगा। कानून इस तरह से बनाया जाता है कि विदेशी कंपनियां भी बॉन्ड खरीद सकती थी। आपको विदेशी फंड या चंदे के नाम पर डराया जाता है। कितने ही संस्थानों को मिलने वाला विदेशी फंड बंद करवा दिया गया, मगर राजनीतिक दलों को विदेशी कंपनियां चंदा दे सकती थी और उनका नाम गुप्त रहेगा, इसका इंतजाम मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड में कर दिया था। यह सवाल भारत की जनता, गोदी मीडिया और उसके संपादकों ने क्यों नहीं पूछा कि विदेशी कंपनियों को गुप्त रूप से चंदा देने की छूट क्यों दी जा रही है? इस भ्रम में ना रहें कि इसकी खोजी रिपोर्टिंग गोदी मीडिया कर रहा था। गोदी मीडिया इतिहास में केवल इसीलिए दर्ज किया जाएगा कि इसने भारत के लोकतंत्र की हत्या करने में भूमिका निभाई। पत्रकारिता के लिए इसे कभी याद नहीं किया जाएगा। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के नितिन सेठी ने सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर 6 पार्ट में रिपोर्ट जारी की। नवंबर 2019 से लेकर 30 जनवरी 2020 के बीच उनकी सारी रिपोर्ट छपती है। कॉमोडोर बत्रा ने अपने सारे दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए कि कोई भी इन्हें पढ़ ले, जांच ले कि उनकी बात सही है या नहीं। नितिन सेठी ने हजारों पन्नों के दस्तावेजों का महीनों अध्ययन किया, तब जाकर इसे प्रकाशित किया। उनकी रिपोर्ट तमिल, अंग्रेजी, हिंदी और मलयालम में है। न्यूज लॉन्ड्री पर सारी रिपोर्ट हिंदी में मिल जाएगी। सोचिए, एक पत्रकार जो अपने दम पर लोगों के चंदे से पत्रकारिता कर रहा है, वो ऐसी रिपोर्टिंग करता है, लेकिन जिस गोदी मीडिया को जनता के पैसे से ही सैकड़ों करोड़ों रुपए के विज्ञापन मिलते हैं, उनके यहां ऐसी पत्रकारिता नहीं होती है। आपके पैसे से ही आपका गला घोटा जा रहा है। मेरी ये बात लिखकर अभी तुरंत अपने पर्स में रख लें।
जब 2017 में सरकार ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम निकाली, तभी हम लोग समझ गए थे ये एक तरीके से करप्शन को एक लीगल जामा पहनाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन हमें सबूत चाहिए थे कागजी, जहां कागजों पे साफ दिखे कि क्या किया गया है। उस समय कॉमोडोर लोकेश बत्रा और हम जैसे कुछ लोग ये कागज़ ढूंढने में लग गए। 2018 में ये स्कीम चल पड़ी, पैसा जमा होने लग गया। 2018 के आखिर तक आते आते ये कागज़ कॉमोडोर लोकेश बत्रा के हाथ लगे। उन्होंने हमको रिपोर्टर्स कलेक्टिव को ये कागज़ सौंप दिए, ये विश्वास के साथ कि हम पढ़ के समझेंगे और सच्चाई बिना डरे बताएंगे। 4 महीने वो कागज़ हम पढ़ते रहे, कागज़ पढ़ते पढ़ते अपने सोर्सेज बनाए जिनसे समझने की कोशिश करी कि ये कागज़ों में क्या क्या है, क्या करने का प्रयास हो रहा है। 4 महीने बाद उस समय चाहे हम लोगों के पास पैसा नहीं था लेकिन हिम्मत थी, वो कागज़ हमने एक 6 पार्ट की श्रृंखला में अलग अलग भाषाओं में एक साथ छापा। उसमें दिखाया कि कैसे सरकार ने RBI, इलेक्शन कमीशन, इन सबके विचारों को नज़रअंदाज करके ये स्कीम चलाने का प्रयास किया था। ये भी दिखाया कि कैसे सरकार ने जो स्कीम को, अपनी स्कीम को तोड़ के पार्टी के लिए पैसा ज़्यादा चंदा जमा करने का प्रयास करती रही। वो सारे कागजात सुप्रीम कोर्ट के केस में लगे एविडेंस के तौर पे, लेकिन हमने फिर परस्यू करना शुरू किया जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें ज़्यादा जल्दी नहीं चल रहा है। 1.5-2 साल करने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा सील्ड एनवलप में बुला के अपने पास जेब में रख लिया था, हमने वो सील्ड एनवलप का डेटा दोबारा निकाला और दिखाया कि कैसे ज़्यादातर पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से जो आ रहा था सिर्फ भाजपा को गया था।
सारी रिपोर्ट यही बताती है कि इस कानून के पीछे का इरादा सही नहीं था, यह पारदर्शी कानून नहीं था, यह एक ऐसा कानून था जिसके जरिए पैसे के सोर्स को गुप्त रखना था। गोपनीयता की बात को समझना जरूरी है। सरकार ने बार बार यही कहा, हमारा मकसद है दान देने वाले की पहचान सामने ना आए क्योंकि इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, मगर जब पहचान गोपनीय होती है तो किसी कंपनी के शेयर होल्डर को भी इसकी जानकारी नहीं होगी कि कंपनी का पैसा कहां कहां लग रहा है, ना ही किसी पार्टी को वोट करने वालों को पता होगा कि उनकी पार्टी को पैसा कहां से मिल रहा है, जीतने के बाद ये पार्टी उस पैसे के बदले में उस कंपनी के लिए क्या करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है वही बात 1957 में 2 अलग अलग फैसलों में बॉम्बे और कोलकाता हाई कोर्ट ने कही थी। दोनों अदालतों ने कंपनियों द्वारा सरकार को निर्बाध चुनावी दान देने के खतरों के बारे में चेताया था। बॉम्बे हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस MC छागला ने कहा था, ये एक ऐसा खतरा होगा जो बहुत तेजी से बड़ा हो सकता है और जो इस देश में लोकतंत्र का गला घोंट सकता है। केस ये था कि टाटा आयरन एंड स्टील चुनावी चंदा देने की अनुमति चाहती थी। टाटा के वकील ने कहा कि कंपनी इतना तो कर ही सकती है कि अपनी सालाना बैलेंस शीट में चंदे की जानकारी शामिल करे, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि यह शर्त बहुत कमजोर होगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ यह काफी नहीं होगा कि शेयरधारकों को पता चले कि किसे चंदा दिया गया है, मगर यह भी जरूरी है कि मतदाताओं को पता चले कि पार्टी को चंदा कैसे मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मतदाता को पार्टी के बारे में जानकारी नहीं है तो कोई भी लोकतंत्र सुचारू रूप से काम नहीं कर सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड में ठीक उल्टा हुआ, दोनों बातें उलट दी गईं। ऐसा कानून लाया गया कि कंपनी के शेयर धारकों को भी पता ना चले और मतदाताओं को भी। आपकी आंखों के सामने इतना बड़ा घोटाला हो गया, फिर भी वो कहते हैं हमारी सरकार के दौर में कोई घोटाला नहीं हुआ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।